ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। पिछले आर्थिक वर्ष में सरकारी बकाया 91 अरब 59 करोड़ रहा, महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट। हर साल बकाया बढ़ना सुशासन के लिए चुनौतीपूर्ण है, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल का कथन। राष्ट्रीय सभा में आगामी आर्थिक वर्ष के विनियोजन विधेयक के सिद्धांत और प्राथमिकताओं पर चर्चा सम्पन्न। आर्थिक अनुशासन और जनआकांक्षाओं को केन्द्र में रखकर अगले वर्ष का बजट तैयार किया गया है, उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल द्वारा स्पष्ट। और उत्तरी गाजा में इजरायल के हवाई हमले में कम से कम 48 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल समक्ष महालेखा परीक्षक ने आर्थिक वर्ष 2080-81 का वार्षिक प्रतिवेदन पेश किया है। राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में आज आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति पौडेल के सामने महालेखा परीक्षक तोयम राय ने ये रिपोर्ट सौंपी। इस अवसर पर राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि आर्थिक अनुशासन बनाए रखने और आर्थिक जवाबदेही बढ़ाने के लिए सार्वजनिक निकायों के पदाधिकारियों को और अधिक जिम्मेदार तथा उत्तरदायी बनना आवश्यक है। राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि सरकारी लेन देन में हर साल बकाया राशि का बढ़ना सुशासन के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है। उन्होंने बताया कि लंबे समय से सरकारी खर्च में बढ़ता बकाया एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। राष्ट्रपति पौडेल ने आर्थिक अनुशासन और आर्थिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महालेखा परीक्षक द्वारा आने वाले दिनों में और सशक्त भूमिका निभाने की आशा व्यक्त की। देश का सरकारी बकाया पिछले आर्थिक वर्ष 2080-81 में 91 अरब 59 करोड़ 79 लाख रुपए रहा है, ये जानकारी महालेखा परीक्षक कार्यालय ने दी। सरकारी बकाया राशि पिछले आर्थिक वर्ष की तुलना में आर्थिक वर्ष 2080-81 में 9.45% बढ़ गई है। आज सार्वजनिक किए गए महालेखा परीक्षक के 62वें वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार सरकारी कार्यालयों, संगठित संस्थाओं, अन्य संस्थाओं, समितियों, प्रदेश निकायों और स्थानीय तहों सहित कुल बकाया 12 खरब 84 अरब रुपए को पार कर गया है। प्रतिनिधि सभा बैठक में आर्थिक वर्ष 2082-83 के लिए विनियोजन विधेयक के सिद्धांत और प्राथमिकता के ऊपर आज भी विचार विमर्श हुआ। बैठक में सांसदों ने देश के समसामयिक विषयों पर सरकार का ध्यान आकर्षण कराया। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक कल सुबह 11 बजे के लिए बुलाई गई है। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में आर्थिक वर्ष 2082-83 के विनियोजन विधेयक के सिद्धांत और प्राथमिकताओं पर चर्चा संपन्न हुई। राष्ट्रीय सभा की बैठक में चर्चा के दौरान उठे सवालों का जवाब देते हुए उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल ने कहा कि आर्थिक अनुशासन और जनता की आकांक्षाओं को केन्द्र में रखकर आगामी आर्थिक वर्ष के बजट की प्राथमिकताएं तय की गई है। अर्थमंत्री पौडेल ने कहा कि आर्थिक अनुशासन बनाए रखते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर देश को आर्थिक कार्रवाई की ग्रे लिस्ट से मुक्त कराने पर बजट केंद्रित होगा। साथ ही निजी क्षेत्र का मनोबल बढ़ाकर निवेश अनुकूल माहौल बनाने, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और गरीब वर्ग के जीवन स्तर में सुधार लाने और सार्वजनिक सेवा प्रवाह को प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया जाएगा। बैठक में सांसदों ने देश के संतुलित विकास के लिए केन्द्र, प्रदेश और स्थानीय सरकारों के बीच समन्वय पर जोर देते हुए कहा कि बजट निर्माण में तालमेल जरूरी है। उन्होंने विकास कार्य को गति देकर आर्थिक समृद्धि हासिल करने के लिए तीनों स्तर की सरकारों के अधिकार और दायित्वों को स्पष्ट करने, एक द्वार प्रणाली से विकास कार्य को आगे बढ़ाने और निजी क्षेत्र व नागरिक समाज की भूमिका बढ़ाने की मांग की। सांसदों ने यह भी कहा कि आगामी बजट में बैंकों के ब्याज दरों में एकरूपता लानी चाहिए और तुलनात्मक लाभ वाले क्षेत्रों की पहचान करके ही बुनियादी ढांचे के निर्माण में निवेश किया जाना चाहिए। इसके अलावा बैठक में संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग द्वारा प्रस्तुत संवैधानिक परिषद कार्य कर्तव्य अधिकार और कार्यप्रणाली संशोधन विधेयक 2079 को धारागत चर्चा के लिए विधायन व्यवस्थापन प्रबंधन समिति को भेजने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक जेठ 5 गति सोमवार दोपहर 1:15 बजे के लिए बुलाई गई है। भूमि संबंधी कुछ नेपाल आईन में संशोधन करने वाला विधेयक 2082 संसद में प्रस्तुत किया गया है। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में भूमि प्रबंधन सहकारी तथा गरीबी उन्मूलन मंत्री बलराम अधिकारी ने यह विधेयक प्रस्तुत किया। सरकार की सिफारिश पर यह विधेयक अध्यादेश के रूप में राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल द्वारा पिछले माघ 2 को जारी किया गया था। सरकार द्वारा जारी किए गए अन्य अध्यादेशों के साथ ही इसे माघ 18 को संघीय संसद सचिवालय में दर्ज कराया गया था। हालांकि इन अध्यादेशों को आगे बढ़ाने के मामले में सत्तारूढ़ दलों के बीच सहमति नहीं बन पाने के कारण इसे रोक दिया गया था। इसके अलावा इसके बाद सरकार ने इस विधेयक को नियमित प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415 # डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अध्यक्षता में नेपाल निवेश बोर्ड की बैठक आज सिंह दरबार स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक में परियोजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करते हुए उनके क्रियान्वयन के लिए अद्यतन सूची तैयार करने का निर्णय किया गया है। वैशाख 2081 में आयोजित निवेश सम्मेलन के दौरान प्रस्तावित परियोजनाओं की सूची तैयार करने के लिए उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का बैठक ने निर्णय किया है। सार्वजनिक निजी भागीदारी और निवेश आयन 2075 के तहत केंद्र, प्रदेश और स्थानीय सरकारों द्वारा संचालित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में समन्वय सुनिश्चित करने हेतु मानक कार्य प्रणाली तैयार करने का निर्देश बैठक ने दिया है। परियोजना विकास समझौते से जुड़े शेष मुद्दों को संबंधित निकायों के साथ चर्चा कर शीघ्र समाधान करने का निर्देश भी दिया गया है। इसी तरह बैठक में ऊपरी कर्णाली जल विद्युत परियोजना के वित्तीय प्रबंधन से संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा की गई। सेती नदी 6450 मेगावाट अर्ध जलाशय परियोजना के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और पर्यावरणीय अध्ययन हेतु सर्वेक्षण अनुमति की अवधि 1 वर्ष बढ़ाई गई है। साथ ही आर्थिक वर्ष 2082-83 के बजट भाषण में निवेश बोर्ड से संबंधित मुद्दों को शामिल करने हेतु सरकार को सुझाव देने का निर्णय किया गया है। ये जानकारी बोर्ड के प्रवक्ता एवं सह सचिव प्रद्युम्न प्रसाद उपाध्याय ने दी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने गैर आवासीय नेपाली संघ को मर्यादित और एकजुट होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया है। काठमांडू में एनआरएनए ग्लोबल कनेक्शन के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री ओली ने संकीर्ण मानसिकता त्याग कर एकता के साथ आगे बढ़ने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गैर आवासीय नेपाली संघ के राजनीतिक आस्थाओं के आधार पर बंटवारे से इसके उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाती, इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ओली ने आगे कहा कि कुछ सीमित लोगों के हितों को ध्यान में रखकर संघ के संविधान में बदलाव करने की प्रवृत्ति ने संस्था में समस्याएं पैदा की है। उन्होंने विवेक और तर्क के आधार पर सभी गैर आवासीय नेपालियों के हित में काम करने का आग्रह किया। धादिंग से पोखरा की ओर जा रही इलेक्ट्रिकल माइक्रोबस आज दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। यह हादसा पोखरा महानगरपालिका 32 के नजदीक हुआ। मृतकों में 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। झांगमाया गुरुंग पोखरा 25 हेमजा निवासी की पहचान हो चुकी है, जबकि 2 अन्य पुरुषों की पहचान की प्रक्रिया जारी है। घायलों को गंडकी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। तूफान और बारिश के बीच ये हादसा हुआ, जिससे वाहन नियंत्रण खो बैठा। कास्की जिला प्रहरी कार्यालय के DSP हरि बहादुर बसनीत ने बताया कि दुर्घटना का सही कारण जांच के अधीन है। गृहमंत्री रमेश लेखक ने कहा कि शांति बनाए रखने के मामले में कोई समझौता नहीं की जाएगी। विराटनगर में आयोजित कोशी प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठी का उद्घाटन करते हुए गृहमंत्री लेखक ने कहा कि बढ़ते साइबर अपराध और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से शांति सुरक्षा को चुनौती मिली है। इन मुद्दों पर गहन विश्लेषण कर नई सुरक्षा रणनीति बनाने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र में नेपाली नागरिकों की बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस कार्यालयों में सेवा लेने आए लोगों को निराश होकर लौटना पड़ता है। ये स्थिति नहीं आने देनी चाहिए। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजरायली सेना द्वारा गाजा के उत्तरी हिस्से पर किए गए भीषण हवाई हमले में कम से कम 48 लोगों की मौत हो गई है जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये हमला अल शाती शरणार्थी शिविर के नजदीक हुआ जहां बड़ी संख्या में विस्थापित फिलिस्तीनी परिवार रह रहे हैं। हमला रात के समय किया गया जब ज्यादातर लोग सो रहे थे। कई आवासीय इमारतें पूरी तरह ध्वस्त हो गई जिसके कारण मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम जारी है। मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं जबकि घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। अब मौसम अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पिछले आर्थिक वर्ष में सरकारी बकाया 91 अरब 59 करोड़ रहा, महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट। हर साल बकाया बढ़ना सुशासन के लिए चुनौती है, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल का कथन। राष्ट्रीय सभा में आगामी आर्थिक वर्ष के विनियोजन विधेयक के सिद्धांत और प्राथमिकताओं पर चर्चा संपन्न। आर्थिक अनुशासन और जन आकांक्षाओं को केन्द्र में रखकर अगले वर्ष का बजट तैयार किया गया है, उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल द्वारा स्पष्ट। पोखरा के लामे आहाल में विद्युतीय माइक्रोबस दुर्घटना घटनाग्रस्त होने से हुई 3 लोगों की मौत और उत्तरी गाजा में इजराइल के हवाई हमले में कम से कम 48 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।